नमस्कार, स्पोर्ट्स कैन के आज के संस्करण के साथ मैं प्रशांत कुमार आप सभी श्रोताओं का अभिनंदन करता हूं। हम लेकर आए हैं स्पोर्ट्स कैन का ये नया रंग, जिसमें है खिलाड़ियों का जोश, खेल का रोमांच और जीत की उमंग। साथ ही होंगी खेल जगत की बड़ी खबरें, शानदार प्रदर्शन और हर मुकाबले की खास बात आपके अपने प्रोग्राम स्पोर्ट्स कैन के साथ। तो शुरू करते हैं एक नए अंदाज में इस प्रोग्राम का ये सफर, लेकिन सबसे पहले एक नजर स्पोर्ट्स हेडलाइंस पर। एशियाई युवा और जूनियर भारोत्तोलन चैंपियनशिप में तितली मांझी ने जीता रजत पदक। कोरिया मास्टर्स बैडमिंटन में रक्षिता रामराज और अश्मिता चालिहा ने महिला सिंगल्स सेमीफाइनल में प्रवेश किया। आर प्रज्ञानंद ने जीता सेंट लुइस रैपिड और ब्लिट्ज का खिताब। एथलेटिक्स अंडर 20 चैंपियनशिप में मोहम्मद अशफाक ने ऐतिहासिक प्रदर्शन करते हुए सेमीफाइनल में जगह बनाई। AHF जूनियर एशिया कप के लिए भारतीय पुरुष टीम का ऐलान, अनमोल एक्का बने कप्तान। और खेल मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने खिलाड़ियों के चयन प्रक्रियाओं में पारदर्शिता, खिलाड़ी केंद्रित शासन और खेल तंत्र में संस्थागत सुधारों का आह्वान किया। भारोत्तोलन से जहां तितली मांझी ने बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए देश के नाम पदक किया है, उज्बेकिस्तान के ताशकंद में एशियाई युवा और जूनियर भारोत्तोलन चैंपियनशिप में आज तितली मांझी ने महिलाओं के 45 किलोग्राम वर्ग में रजत पदक जीता। प्रतियोगिता के पहले दिन तितली ने स्नैच में 65 किलोग्राम और क्लीन एंड जर्क में 80 किलोग्राम भार उठाकर कुल 145 किलोग्राम वजन के साथ ये पदक हासिल किया। और श्रोताओं, आपको बता दें कि इसी स्पर्धा में परिश्मिता गोगोई 141 किलोग्राम के कुल वजन के साथ चौथे स्थान पर रही। परिश्मिता स्नैच में 65 और क्लीन एंड जर्क में 76 किलोग्राम वजन ही उठा सकी। ये प्रतियोगिता 14 अगस्त तक खेली जाएगी और उम्मीद करें कि जितने भी भारतीय खिलाड़ी इस प्रतियोगिता में भाग ले रहे हैं वो अलग अलग स्पर्धाओं में पदक जीतें। और अब रुख कर लेते हैं बैडमिंटन कोर्ट की ओर, जहां कोरिया मास्टर्स बैडमिंटन में रक्षिता रामराज और अश्मिता चालिहा ने महिला सिंगल्स सेमीफाइनल में प्रवेश कर लिया है। क्वार्टर फाइनल मुकाबले में आज रक्षिता ने तन्वी शर्मा को और अश्मिता ने हिना केची को हराया। अश्मिता और रक्षिता सेमीफाइनल में कल आमने सामने होंगी। सुनते हैं हमारे सहयोगी विशाल की रिपोर्ट।
विश्व में 50वें नंबर की खिलाड़ी अश्मिता ने टूर्नामेंट का अब तक का सबसे बड़ा उलटफेर करते हुए क्वार्टर फाइनल के रोमांचक मुकाबले में जापान की शीर्ष वरीयता प्राप्त हिना अकेची को 20-22, 21-15, 21-19 से पराजित किया। हिना ने अच्छी शुरुआत करते हुए 7-5 की बढ़त बना ली, जिसके बाद अश्मिता ने स्कोर 7-7 से बराबर कर दिया। लेकिन भारतीय खिलाड़ी की कुछ गलतियों से जापान की खिलाड़ी ने इंटरवल तक 11-9 की बढ़त हासिल कर ली। अश्मिता ने हालांकि कड़ी चुनौती पेश की, उन्होंने 12-12 और फिर 15-15 पर स्कोर बराबर कर लिया। इसके बाद उन्होंने 17-15 और 18-16 से बढ़त भी बना ली। हालांकि हिना ने यहां एक बार फिर वापसी की और पहला गेम जीत लिया। दूसरे गेम में अश्मिता ने जोरदार वापसी की, स्कोर 7-7 से बराबर होने के बाद उन्होंने लगातार 6 अंक जीतकर 13-7 की बढ़त बना ली। हालांकि हिना ने अंतर को कम करके 14-16 कर दिया, लेकिन भारतीय खिलाड़ी ने संयम बनाए रखा और अगले 6 में से 5 अंक जीतकर मैच को निर्णायक गेम तक पहुंचा दिया। निर्णायक गेम भी कुछ इसी तरह चला, जिसमें अश्मिता ने 9-3 की बढ़त बनाई और इंटरवल तक 11-9 की बढ़त बरकरार रखी। उन्होंने इसे 18-11 तक जरूर पहुंचाया, लेकिन हिना ने फिर जोरदार वापसी की और लगातार 6 अंक जीतकर अंतर को 17-18 तक कम कर दिया। अश्मिता ने अंतिम क्षणों में अपना संयम बनाए रखा और यादगार जीत हासिल की। उधर रक्षिता ने एक गेम से पिछड़ने के बाद बेहतरीन वापसी करते हुए तीसरी वरीयता प्राप्त और अपनी ही देश की तन्वी शर्मा को 1 घंटे से अधिक समय तक चले मुकाबले में 18-21, 21-19, 21-18 से पराजित किया। तन्वी के खिलाफ ये उनकी चौथी जीत है। पहले गेम में रक्षिता ने 13-8 की बढ़त बनाई, लेकिन तन्वी ने शानदार वापसी की और अगले 9 में से 8 अंक हासिल किए और स्कोर को 8-13 से 16-14 तक ले जाने के बाद गेम अपने नाम कर लिया। दूसरे और तीसरे गेम में भी दोनों खिलाड़ियों के बीच कड़ी टक्कर देखने को मिली। दोनों ने एक दूसरे से आगे निकलने में कोई कसर नहीं छोड़ी, लेकिन तीसरे और निर्णायक गेम के आखिर में तन्वी की 3 गलतियां उन्हें भारी पड़ गईं। रक्षिता ने इसका फायदा उठाया और तीसरा गेम और मैच अपने नाम कर लिया। हालांकि कृष्ण प्रसाद गरागा और पृथ्वी कृष्ण मूर्ति रॉय की भारतीय पुरुष डबल्स जोड़ी मलेशिया के मान वेई चोंग और सो वोई यिक से 7-21, 8-21 से हारने के बाद टूर्नामेंट से बाहर हो गई। विशाल शर्मा, स्पोर्ट्स कैन।
आज का मुकाबला श्रोताओं काफी दिलचस्प रहा। तन्वी शर्मा पर सबकी निगाहें थी, लेकिन आज रक्षिता से हारकर वो टूर्नामेंट से बाहर हो गई। हाल ही में उन्होंने ताइपे ओपन का खिताब भी अपने नाम किया था, तो ऐसे में उम्मीद की जा रही थी कि इस प्रतियोगिता में भी उनका बेहतरीन प्रदर्शन रहेगा, लेकिन रक्षिता ने बेहतरीन खेल दिखाते हुए सेमीफाइनल में जगह बनाई। और अगर हम रक्षिता की बात करें तो 2024 में स्लोवानिया ओपन BWF इंटरनेशनल खिताब उन्होंने अपने नाम किया है, और वियतनाम इंटरनेशनल चैलेंजेस में भी उनका प्रदर्शन काफी बेहतरीन रहा है। और अगर उनकी प्रतिद्वंदी की बात की जाए जो कि अश्मिता चालिहा है, जिन्होंने 2018 में टाटा ओपन इंडिया इंटरनेशनल चैलेंजर्स में महिला सिंगल्स का खिताब जीता था। इसके अलावा दुबई इंटरनेशनल चैलेंजर्स में भी महिला सिंगल्स में उन्होंने जीत दर्ज की, और 2019 के दक्षिण एशियाई खेल में सिंगल्स और टीम स्पर्धा दोनों में स्वर्ण पदक उन्होंने जीता। मालदीव इंटरनेशनल चैलेंजर जो कि 2023 में हुआ था, उसमें भी महिला सिंगल्स का खिताब उन्होंने अपने नाम किया। तो ऐसे में ये देखना दिलचस्प होगा कि कौन सा खिलाड़ी जीत दर्ज करता है और फाइनल में अपनी जगह बनाता है। और अब बात करते हैं शह और मात का खेल शतरंज पर। भारतीय ग्रैंड मास्टर आर प्रज्ञानंदन ने ग्रैंड चेस टूर सेंट लुइस रैपिड और ब्लिट्ज का खिताब अपने नाम किया। फाइनल में प्रज्ञानंदन ने एक राउंड बाकी रहते ही जावोखी सिंदारोव को हराया। आइए सुनते हैं खिताबी मुकाबले पर ये रिपोर्ट।
प्रज्ञान आनंद और उज्बेकिस्तान की जावोखे सिंदारोव के बीच आखिरी मुकाबले का अंत ड्रॉ पर होने के साथ ही भारतीय ग्रैंड मास्टर का खिताब पक्का हो गया। 20 वर्षीय भारतीय खिलाड़ी ने कुल 35 में से 23 अंक हासिल कर चैंपियनशिप अपने नाम की। सिंदारोव ने 22 पॉइंट के साथ दूसरा स्थान हासिल किया, जबकि वेस्ली सो 20.5 अंक के साथ तीसरे स्थान पर रहे। लेवन एरोनियन चौथे स्थान पर रहे और फेबियानो करुआना, लीनियर डोमिंगवेज और जॉर्डन वैन फॉरेस्ट 17 पॉइंट के साथ संयुक्त रूप से स्थान पर रहे। इस जीत से प्रज्ञान आनंद सिंह फील्ड कप के पहले ग्रैंड चेस टूर स्टैंडिंग में दूसरे स्थान पर पहुंच गए हैं। हालांकि फैबियानो अभी भी ओवरऑल ग्रैंड चेस टूर स्टैंडिंग में सबसे आगे हैं। प्रज्ञान आनंद ने 5 दिन के इस इवेंट में शुरू से आखिर तक बढ़त बनाए रखी। सिंदारोव ने आखिरी दौर में कड़ी चुनौती पेश की, लेकिन सफल नहीं हो पाए और 1.5 पॉइंट के अंतर से उपविजेता रहे। मैच के बाद प्रज्ञान आनंद ने कहा, इस प्रतियोगिता से मेरे गेम में सुधार हुआ है।
Feels great. And when you see the score, it's like 1.5 round to spare. Everything looks smooth, but wasn't the case. It was crazy. I mean, kudos to Javakiri. Kept the fight till the end. Yeah, he was also fighting really well. So, I mean, just basically what I said yesterday, not to do anything stupid myself. But then I managed to do it against Avander in the second game, where I was just, I had so much control and I was just winning. But then I managed to basically not take the draw, and then I lost the game, which is exactly what I wanted to avoid. I mean, even though I lost that game, I felt my game quality. Okay. Yeah, I was just trying to calm myself, and I also wanted to like win it separately. I wanted to win the rapid and split separately, which I think I managed. So that's also good.
टूर्नामेंट में 10 बेहतरीन ग्रैंड मास्टर शामिल हुए थे। 5 दिन के खेल में खिलाड़ियों ने 9 रैपिड राउंड और 18 ब्लिट्ज राउंड खेले। इस दौरान कुल मिलाकर 135 गेम हुए, जिनमें सिंगफील्ड कप और GCT ग्रैंड फाइनल से पहले महत्वपूर्ण टूर प्वाइंट दांव पर थे। मुकेश कुमार, स्पोर्ट्स कैन।
और श्रोताओं, आपको बता दें कि ये साल प्रज्ञानानंद के लिए बेहतरीन रहा है। इस वर्ष ही जून में उन्होंने नॉर्वे चेस खिताब जीतकर पहले भारतीय बने थे जिन्होंने ये खिताब अपने नाम किया था और ऐतिहासिक प्रदर्शन किया था। और अब चलते हैं एथलेटिक्स की ओर। अमेरिका के यूजीन में आयोजित एथलेटिक्स U20 चैंपियनशिप में मोहम्मद अशफाक ने ऐतिहासिक प्रदर्शन करते हुए सेमीफाइनल में जगह बना ली है। उन्होंने पुरुषों की 400 मीटर दौड़ में U20 राष्ट्रीय रिकॉर्ड तोड़कर चैंपियनशिप के अगले दौर में क्वालिफाई किया। सुनते हैं एक रिपोर्ट।
19 वर्षीय अशफाक पहले दौर की हीट 5 वर्ग में 45.81 सेकंड के साथ दूसरे स्थान पर रहे। अमेरिका के जेडन डी लियोन 45.63 सेकंड के साथ शीर्ष स्थान पर रहे। अशफाक ने चौथे स्थान पर रहते हुए सेमीफाइनल में जगह बनाई। इस दौरान अशफाक ने इस वर्ष अप्रैल में बनाए गए अपने ही पिछले राष्ट्रीय रिकॉर्ड 46.05 सेकंड को भी बेहतर किया। महिलाओं की चक्का फेंक के फाइनल में 18 वर्षीय कम्बोज 53.24 मीटर के थ्रो के साथ छठे स्थान पर रही। चीन की सू यिक्सन पहले और अमेरिका की जैसलीन मैसी दूसरे स्थान पर रही। पुरुषों की ऊंची कूद में बसंत ने क्वालिफाइंग राउंड में 2.14 मीटर की कूद लगाकर पांचवां और कुल मिलाकर 11वां स्थान हासिल करके फाइनल के लिए क्वालिफाई किया। शशांक कुमार, स्पोर्ट्स कैन।
श्रोता, आपको बता दें कि तनु चौधरी अपने हीट में पांचवें और कुल मिलाकर 33वें स्थान पर रहने के बाद महिलाओं की 400 मीटर बाधा दौड़ के सेमीफाइनल में जगह बनाने में असफल रही। वहीं अमित कुमार ने पुरुषों की 400 मीटर बाधा दौड़ में आठवां और अंतिम स्थान हासिल किया। पी रोशन और धनुष राज दोनों ही पुरुषों की ट्रिपल जंप के फाइनल के लिए क्वालिफाई करने में असफल रहे। और अब बात हॉकी की कर लेते हैं। हॉकी इंडिया ने AHF जूनियर एशिया कप के लिए आज भारतीय पुरुष टीम का ऐलान कर दिया है। टीम की कमान अनमोल एक्का के हाथों में सौंपी गई है। यह प्रतियोगिता चीन के मोकी में 30 अगस्त से 13 सितंबर तक खेली जाएगी। टूर्नामेंट के लिए 18 खिलाड़ियों का चुनाव किया गया है, जबकि 2 वैकल्पिक प्लेयर्स को भी टीम में रखा गया है। सुनते हैं किन खिलाड़ियों को टीम में जगह मिली है।
डिफेंडर अनमोल एक्का की कप्तानी वाली भारतीय टीम ने हाल ही में बेल्जियम का एक शानदार एक्सपोजर दौरा पूरा किया, जहां टीम की भिड़त मजबूत इंटरनेशनल टीमों से हुई थी। इस दौरे से खिलाड़ियों को मैच का अनुभव और अहम सीख मिली, जिससे टीम अपनी प्रगति का आकलन कर सकी, अपने कॉम्बिनेशन को बेहतर बना सकी और AHF जूनियर एशिया कप से पहले अपनी तैयारियों को और मजबूत कर सकी। टीम बेंगलुरु में साई सेंटर पर मलेशियाई अंडर 21 टीम के साथ फ्रेंडली मैच खेलकर और भी ज्यादा प्रतिस्पर्धी अनुभव हासिल कर रही है। टीम के चयन पर बात करते हुए कोच सोयस ने कहा कि यह टूर्नामेंट एशिया की प्रमुख जूनियर हॉकी प्रतियोगिताओं में से एक है, जो महाद्वीप की शीर्ष उभरती टीमों को एक बेहद प्रतिस्पर्धी माहौल में एक साथ लाती है। ये प्रतियोगिता भारत की युवा टीम को एशिया की सर्वश्रेष्ठ टीमों के खिलाफ खुद को परखने और अपनी मजबूत छाप छोड़ने का मौका देगा।
खेल मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने खिलाड़ियों के चयन में अधिक पारदर्शिता, खिलाड़ी केंद्रित शासन और देश के खेल तंत्र में संस्थागत सुधारों का आह्वान किया। आज नई दिल्ली में आयोजित राष्ट्रीय खेल महासंघ सम्मेलन को संबोधित करते हुए डॉक्टर मांडविया ने कहा कि सभी हितधारकों के लिए खिलाड़ियों के हित और कल्याण सर्वोपरि होना चाहिए। उन्होंने इस बात पर बल दिया कि किसी भी खिलाड़ी के साथ अन्याय नहीं होना चाहिए। डोपिंग के मुद्दे पर डॉक्टर मांडविया ने भारतीय खेलों से इस खतरे को खत्म करने के लिए एक व्यापक रणनीति का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि कार्रवाई केवल खिलाड़ियों तक सीमित नहीं होनी चाहिए और निर्माताओं, आपूर्तिकर्ताओं, सुविधादाताओं और उपयोगकर्ताओं सहित पूरी श्रृंखला से एक पारदर्शी और मजबूत तंत्र के माध्यम से निपटा जाना चाहिए। खेल मंत्री ने भारत के स्वदेशी कोचिंग तंत्र को मजबूत करने और विदेशी प्रशिक्षकों पर अत्यधिक निर्भरता को कम करने की आवश्यकता पर भी बल दिया। इस सम्मेलन में राष्ट्रीय खेल संघों द्वारा राष्ट्रीय खेल प्रशासन अधिनियम 2025 के अनुपालन, सुशासन प्रथाओं और एशियाई खेल 2026, लॉस एंजल्स ओलंपिक 2028 और राष्ट्रमंडल खेल 2030 के लिए भारत की तैयारियों की समीक्षा की गई। और अब बात गोल्फ पर। स्नेहा सिंह ने तमिलनाडु के होसुर में हीरो महिला प्रो गोल्फ टूर के 11वें चरण का खिताब अपने नाम किया। स्नेहा ने 6 शॉट की बढ़त गंवाने के बाद प्लेऑफ में वापसी करते हुए वाणी कपूर को हराया। स्नेहा ने दूसरे दिन 10 अंडर का कार्ड खेला और अंतिम दिन 5 ओवर 76 का कार्ड खेला। अब कार्यक्रम में बात उस खिलाड़ी की जिसने अपने स्विंग गेंदबाजी से विश्व के कई बल्लेबाजों को छकाया है। धारदार गेंदबाज और भारत के लिए हैट्रिक लेने वाले दीपक चहर का आज जन्मदिन है। 2018 में भारतीय टीम के लिए डेब्यू करने वाले चहर ने 13 एक दिवसीय में 16 विकेट लिए हैं और 2 अर्धशतक लगाते हुए 203 रन बनाए हैं। वहीं 25 T20 में उन्होंने 31 विकेट झटके हैं। चहर ने 2016 से अब तक IPL में 96 विकेट अपने नाम किए। दीपक ने पुरुष T20 क्रिकेट का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करते हुए नवंबर 2019 में बांग्लादेश के खिलाफ नागपुर में मात्र 7 रन देकर 6 विकेट अपने नाम किए थे।
So much riding on this ball. It's a hat-trick ball. He gets a wicket with the best figures ever in T20 cricket. And he does! It's a hat-trick. It's the best figures ever. In T20 internationals, for Deepak Chahar, he's finished 6 for 7. The first Indian to take a hat-trick. He set all kinds of landmarks. Well done, Deepak Chahar.
और श्रोताओं, अब समय हो रहा है आपसे विदा लेने का। आपको ये कार्यक्रम कैसा लगा, इस पर आप अपनी राय और सुझाव स्पोर्ट्सकैन की ईमेल sportscan.air@gmail.com पर हमें भेज सकते हैं। तब तक के लिए नमस्कार।